पार्थ इस वक्त सुनैना के साथ एक लैब में था और उसने अपना सारा प्लान उसे बता दिया था। वो इशिका से अपना काम करवाकर उसका नाम यूज करना चाहता था। उसे इशिका के किए प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं था। दवाइयां तो उसकी लैब बन रही थीं जिन पर इशिका का नाम आना था, ताकि उन दवाइयों को खाकर लोग मरने लगे तो इशिका पर इल्ज़ाम आए। उसका पूरा प्लान सुनने के बाद सुनैना के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई। उसने सर हिलाकर कहा, पहले मुझे समझ नहीं आया कि कैसे मैं राजवंश फैमिली की नींव हिला सकती हूँ ताकि मेरे बेटे को भी नुकसान ना हो और वो बर्बाद हो जाए। मुझे कभी वसुधा राजवंश ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे एक छोटे से झगड़े को तलाक में बदल दिया गया और फिर प्रशांत की शादी अंजलि से करवा दी गई। मेरे बेटे नकुल को कभी वो अधिकार नहीं मिला, जबकि वसुधा राजवंश अभिमन्यु को सिर आंखों पर चढ़ा कर रखती है। इतनी कम उम्र में भी उसे सीईओ की पोजीशन दे दी गई। सबसे ज्यादा शेयर्स उसके पास है। अभिमन्यु तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि अभिमन्यु और वसुधा की कमजोरी आजकल एक ही शख्स है और वो है इशिका सिंघानिया। क्यों ना उसी को मोहरा बनाया जाए। पार्थ अपनी माँ का दर्द समझ रहा था। वो उसके पास आया और उसका हाथ सहलाकर बोला, आपके हर एक आंसू का हिसाब लूंगा मैं। मुझे नहीं पता आपने नकुल राजवंश को इस काम के लिए क्यों चुना था, जबकि वो इतना सेल्फिश निकला कि वहां जाते ही बदल गया। अगर वो मेरा भाई नहीं होता तो सबसे पहले मैं उसी से बदला लेता। अब जाने भी दो, राजवंश फैमिली का कुछ तो अंश आएगा ना उसके अंदर, वो सबके सब स्वार्थी हैं, सुनैना ने सख्त आवाज में कहा। पार्थ ने उसके बात पर हामी भरी। अगर सुनैना नकुल को सपोर्ट नहीं करती तो पार्थ अब तक उसे कब का बर्बाद कर चुका होता। लैब में बात करने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए थे। दूसरी तरफ इशिका को काम करते हुए सुबह से दोपहर का वक्त हो गया था। जब वो काम करती तो उसमें पूरी तरह खो जाती थी। 3 बजने को आ रहे थे लेकिन उसने लंच तक नहीं किया था। इशिका ने अपनी स्टडी में किसी को भी आगे से मना किया था, हालांकि दिशांक ने उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए पहले ही खाने पीने का सामान रखवा दिया था, लेकिन इशिका ने उनको हाथ तक नहीं लगाया था। वहीं अभिमन्यु को भी मीटिंग्स के चलते फ्री होने में टाइम लग गया। फ्री होते ही उसने तुरंत इशिका को कॉल किया। अभिमन्यु का कॉल देखकर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से अभिमन्यु ने धीमी रोमांटिक वॉइस में कहा, वेरी बैड मिसेज राजवंश, खाना नहीं खाया अब तक, प्रेग्नेंट हो तुम, हमारे बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। उसकी बात सुनकर इशिका का मुंह बन गया। वो बोली, अरे नहीं, ये गलत बात है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड बनने की बात कही थी, इसके लिए इतना सारा ड्रामा करना पड़ा, डैड के सामने झूठ बोलना पड़ा, और अब बच्चा बीच में कहाँ से आ गया। शादी से पहले बच्चा पैदा करना गलत बात होती है मिस्टर राजवंश, मेरे कुछ एथिक्स हैं, करीब आना है तो शादी करनी पड़ेगी। रियली? फिर ऐसा करो, तैयार हो जाओ, अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस चलते हैं, अभिमन्यु ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरे डैड को कन्विंस करो, मेरी मॉम को मनाओ, पिछली बार की तरह नहीं चलेगा कि बिना हम दोनों की मर्जी के शादी हो गई, इशिका ने जवाब दिया। वो बातों ही बातों में अभिमन्यु को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी मॉम तो पहले ही मेरे साथ रहती है तो वो मान जाएगी, रही बात तुम्हारे डैड की तो वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी बेटी के लिए मुझसे अच्छा दामाद कहीं मिल ही नहीं सकता है। फिर क्या कहती हो, आज ही चॉकलेट और बुके लेकर पहुंच जाऊं, अभिमन्यु बोला। अचानक सामने से कोई जवाब नहीं आया तो अभिमन्यु ने हड़बड़ाकर बोला, क्या हुआ, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ इशिका नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। उसके मोबाइल का स्पीकर ऑन था और सामने केशव खड़े उसे घूर रहे थे। अभिमन्यु के हड़बड़ाने पर इशिका के बजाय केशव ने जवाब देते हुए कहा, बेशक मेरी बेटी के डैड जानते हैं मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, लेकिन तुम मेरी बेटी को रिजेक्ट कर चुके हो। अब मेरे अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं मेरी बेटी की शादी ऐसे घमंडी इंसान से नहीं करवाऊंगा जो पहले भी उससे शादी के लिए इनकार कर चुका हो। अभिमन्यु ने एम्बैरेसमेंट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मैं आपको कैसे हाँ कह सकता था मिस्टर सिंघानिया, मेरी और इशिका की शादी को रजिस्टर हुए 3 साल हो गए और आपने मुझे 1 साल पहले शादी के लिए प्रपोज किया था। सोचो, आपकी बात मान लेता तो आपकी असली बेटी का पति आज कोई और होता। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, अब जब इम्प्रेस करने की बात कर ही दी है तो सच में इम्प्रेस करो, फिर शायद मैं मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने के बारे में सोच सकूं। और हाँ, आगे से इसे कॉल करके परेशान मत करना, केशव ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं कॉल कट होते ही केशव और इशिका एक साथ में हंस पड़े। केशव ने इशिका को अपने पास आने का इशारा किया और उसके पास आने पर उसे सीने से लगा लिया। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ ये ड्रामा करने का प्लान किसका था। अभिमन्यु का, इशिका ने धीरे से जवाब दिया। लगा ही था, उसे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे प्रेग्नेंट होने पर वो तुमसे झगड़ा करके तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं भेजेगा, केशव ने सार्कास्टिकली सर हिलाकर कहा। इशिका उनसे अलग हुई और कहा, तो क्या मैं अभिमन्यु को बता दूं कि आपको सब पता चल गया है। बिल्कुल नहीं, अब थोड़ा ड्रामा मुझे भी करने दो, केशव ने सख्ती से जवाब दिया तो इशिका मुस्कुरा दी। केशव सिंघानिया जो हमेशा बिजनेस माइंडेड इंसान रहे थे, पहली बार उन्हें फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम बिताने का मौका मिल रहा था। ऊपर से खुद की बेटी के साथ, तो वो उसे कैसे जाने देते। लेकिन केशव इतने भी नादान नहीं थे जो उन्हें समझ न आए कि इशिका यहाँ क्यों आई होगी। अचानक उनके चेहरे के भाव सख्त हुए और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब बिना कुछ छुपाए मुझे सीधे सीधे यहाँ आने का कारण बताओ। वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता था और तुम भी उसके साथ रहना चाहती थी, फिर राजवंश फैमिली में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम कुछ ही घंटों में अपना फैसला बदलकर यहाँ आ गई। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर कल शाम जो भी हुआ था उसके बारे में केशव को बता दिया। नक्श के सिर पर अभी भी उसके प्यार का भूत सवार था और वो उसे हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से उसने इशिका के सामने अभिमन्यु को नुकसान पहुंचाने की बात कही ताकि इशिका उसके पास आ जाए। पूरी बात बताने के बाद इशिका ने उदास स्वर में कहा, अफसोस हो रहा है कि वो लड़का किसी टाइम में मेरा फ्रेंड था, जबकि अब तो उसे देखकर मुझे दूसरा आदर सिंघानिया नजर आता है। कहता है अभिमन्यु के जाने के बाद मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा, उसे बाप का प्यार देगा। यही वादा आदर सिंघानिया ने मेरी माँ के साथ किया होगा और फिर मुझे बदल दिया। उसकी वजह से मुझे इतने साल तकलीफ में बिताने पड़े। हर वक्त यही सोचती रही कि राधिका सिंघानिया मेरी माँ होती तो मुझे इस नर्क से मुक्ति मिल जाती। मालविका और उसकी बेटी आयशा ने मुझे हमेशा सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। वो तो अभिमन्यु था जिसे मेरी सोशल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने मुझे सबके सामने अपनी पत्नी का दर्जा दिया। सब कुछ बताते हुए इशिका की पलकें भीगने लगी थी। वाकई उसने काफी कुछ कहा था। उसकी बातें सुनकर केशव को भी बहुत बुरा लगा और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। प्रेगनेंसी में ज्यादा स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं होता है। ऐसा करो, अपना सामान समेटो, बाहर जाकर लंच करते हैं, फिर हम घर चलेंगे, केशव ने इशिका का ध्यान भटकाने के लिए कहा।
इशिका ने भी उनकी बात पर हामी भरी और बिना किसी शिकायत के उनकी बात मानने लगी। उसने हमेशा रात रात भर जाग कर काम किया था। कोई उसे पूछता तक नहीं था कि उसने खाना तक खाया है या नहीं। जब से वो दिशांग से जुड़ी थी, वो जरूर उसके साथ देने के लिए लेट तक काम करता और उसका ख्याल रखता। उसके बाद इशिका वहां से केशव के साथ बाहर लंच के लिए चली गई। केशव और इशिका ने साथ में अच्छा टाइम बिताया। इशिका को घर छोड़ने के बाद केशव अपनी गाड़ी में थे। वो भूल नहीं रहे थे जो भी इशिका ने थोड़ी देर पहले बताया था। तुम्हारे इस दर्द का एक कारण तुम्हारी खुद की माँ भी है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी कहकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। फिलहाल जिन्होंने डायरेक्टली तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, उनसे भी निपटना बाकी है, केशव ने खुद से कहा और उन्होंने तुरंत अरमान को कॉल लगाया। अरमान कॉल रिसीव करते ही बोला, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके पास ठहर जाता हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो मुझे वापस भेजना था। अब बताइए क्या काम है। मैंने तुम्हें राजवंश फैमिली के मेम्बर्स के बारे में पता लगाने को कहा था। कहाँ बिजी हैं आजकल वो सब, केशव ने सख्त लहजे में पूछा। राजवंश एम्पायर में काफी गंभीर माहौल चल रहा है। लगता है किसी वजह से अभिमन्यु राजवंश नाराज है, तभी वो नकुल राजवंश और नक्श राजवंश की परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलवाकर आज शाम मीटिंग करने वाला है। पिछले दिनों राजवंश एम्पायर में हुई बोर्ड मीटिंग के चलते एम्प्लॉयज नक्श और नकुल के पक्ष में नहीं है। मैंने तो ये तक सुना है कि नक्श बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है। अरमान ने राजवंश एम्पायर में आजकल जो भी चल रहा था उसके बारे में केशव को बता दिया था। फिर ऐसा करो कि नक्श राजवंश का नया बिजनेस शुरू करने में उसकी मदद करो, केशव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। क्या चाचू, आप बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो। आपको नहीं पता, लेकिन पास्ट में उसने इशिका के साथ बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि उसे आयशा के साथ मिलकर मुझे इसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, और आप उसकी हेल्प कर रहे हो, अरमान ने चौंकते हुए कहा। वैसे तो वो केशव के फैसले पर सवाल नहीं खड़ा करता था, लेकिन उसे नक्श की हेल्प करने का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, क्योंकि ये जरूरी है। बर्बाद करने से पहले अगर कोई इंसान आसमान पर पहुंच जाए और अचानक से एक झटके में धड़ाम से आकर नीचे गिरे, तो बर्बादी का मजा दुगुना हो जाता है। तुम समझ रहे हो ना क्या करना है, केशव ने इशारों ही इशारों में उसे सब समझाते हुए कहा। बिल्कुल समझ गया, और वही होगा जो आप चाहते हैं, अरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरमान तुरंत केशव के बताए हुए काम पर लग चुका था, तो वहीं केशव इस वक्त गाड़ी में कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ वो टाइम भी आ गया था जब अभिमन्यु को नक्श और नकुल को उनकी असली जगह दिखानी थी। उसने एक बार फिर सभी इम्पॉर्टेंट बोर्ड मेंबर्स को इकट्ठा किया और एक बड़ी मीटिंग बुलाई। नक्श और नकुल अभी तक इस तरह की किसी बड़ी मीटिंग से बच रहे थे, लेकिन कल रात नक्श की हरकत ने उन्हें मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया था। नकुल ने अपनी तरफ से पैसों के लेन देन की पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन अभिमन्यु उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठा था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं अब केशव किससे मिलने जा रहा है और अभिमन्यु कैसे इन्हें सबक सिखाएगा। वैसे कहानी अपने अंत की तरफ को बढ़ रही है, तो धीरे धीरे विलेंस को खत्म करना जरूरी है। इसका सेकेंड सीजन भी आएगा।